संख्या 13 अध्याय 2 स्त्री पूजा और उसका वैष्णव रूप। भागवत आदि पुराणों में गोपाल कृष्ण की जो कथा पाई जाती है उसमें गोपियों के साथ रासलीला का वर्णन एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन गोपियों का विवाह अन्य गोपों के साथ हो चुका था। कृष्ण के साथ इनका प्रेम परकिया प्रेम के रूप में ही हो सकता है। बंगाल के चैतन्य संप्रदाय में परकिया प्रेम को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसे प्रेम की चरम सीमा बताया गया है। अनेक पंडितों मनीषियों और भक्तों ने इस परकिया प्रेम की फिलॉसफी को बहुत ऊंचा उठा दिया है। हम आगे इस बात पर कुछ विचार करेंगे। यहाँ यह कह रखना उचित होगा कि बल्लभ संप्रदाय में गोपियों को परकिया नहीं समझा गया है। भागवत का एक अद्भुत अर्थ करके यह सिद्ध किया गया है कि गोपियां कृष्ण की विवाहिता पत्नी थी। कथा की संगति इस प्रकार लगाई गई है। भागवत में यह कथा आती है कि ब्रह्मा ने श्री कृष्ण की परीक्षा के लिए एक बार सारी गायों और गोपालों को चुरा कर छिपा दिया। इस पर श्री कृष्ण ने उतनी ही गायों और गोपालों का रूप धारण कर लिया। किसी को पता ही नहीं चला कि उनके घर का कोई खो गया है। इसी वर्ष सभी गोपियों का विवाह हुआ। साल भर के बाद ब्रह्मा ने सभी गोपों और गोपालों को लौटा दिया। इस प्रकार गोपाल फिर अपने अपने घर आ गए। उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि कोई गोपी उनकी स्त्री है। इस प्रकार गोपियों का वास्तविक विवाह श्री कृष्ण से ही हुआ है। इस कथा से पता चलता है कि गोपियों को परकिया मानने में जो सामाजिक अड़चन पड़ती थी उसका इस कथा के द्वारा निराकरण किया गया है। वस्तुतः भारतवर्ष में परकिया प्रेम बहुत पुराने जमाने से एक खास संप्रदाय का धर्म था। एक मणिन्द्र मोहन बोस पोस्ट चैतन्य सहज या कल्ट डॉक्ट्रिन ऑफ परकिया लव अध्याय। श्री जीव गोस्वामी पाद ने भागवत संदर्भ में स्वकीय भाव की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने का प्रयत्न किया है, पर चैतन्य चरितामृत में परकीय भाव को ही श्रेष्ठ कहा है। दूसरा, सूरदास ने राधिका और कृष्ण का विवाह कराया है। वाजही जे वाजन सकल नभ सुर पुहप अंजलि बरसही, थकी रे रहे व्योम विमान मुनिगण जे सबद करी हर सही। सूरदास ही भयो आनंद पूज मन की साधा, श्री लाल गिरिधर नवल दुलहे दुल्हीन श्री राधा। बारने तोरने बाधाए हरि कीन्हो उछाह, ब्रज की सब रीति भई बरसाने ब्याह। दुलहिन वृषभानुसुता अंग अंग भ्राज, सूरदास प्रभु दुलह देखो श्री ब्रजराज। पृष्ठ संख्या 14। कहा जाता है कि ऋग्वेद ब्रैकेट में 10:129-25 ब्रैकेट बंद से इस परकिया प्रेम का समर्थन होता है। अथर्ववेद में इसका स्पष्ट वर्णन पाया जाना बतलाया गया है। छांदोग्य उपनिषद में ब्रैकेट में 2:13-1 ब्रैकेट बंद के कांचन परिहरेत मंत्रांश का अर्थ आचार्य शंकर ने इस प्रकार किया है, जो वामदेव समान को जानता है उसे मैथुन की विधि का कोई बंधन नहीं है। उसका मंत्र है किसी स्त्री को मत छोड़ो। अवश्य ही इस मतवाद को वैदिक युग में बहुत अच्छा नहीं समझा जाता होगा, पर इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार का एक संप्रदाय था। कहते हैं कथा वथसु जातक ब्रैकेट में 23:2 ब्रैकेट बंद और मझिम निकाय जिल्द 1 पृष्ठ संख्या 155 से भी इस प्रकार की बातें सिद्ध होती है। इसमें संदेह नहीं कि स्वयं बुद्ध देव के युग में यह प्रथा खूब प्रचलित थी। उन्हें कई जगह इसकी निंदा करनी पड़ी है। सन ईस्वी के आरंभ में भारतवर्ष में एक विचित्र धार्मिक स्थिति थी। हिंदू धर्म सिर उठा रहा था, बौद्ध धर्म गिर रहा था। बाहर से आई हुई अनेक जातियों के विविध विचार समाज में प्रविष्ट होकर नाना संप्रदायों और मतवादों के उद्भव के कारण हो रहे थे। पतनशील बौद्ध धर्म फिर से उठने की चेष्टा में था। उनके धर्म के प्रति नाना कारणों से श्रद्धा लोगों की उठती जा रही थी। संघ में भिक्षुक भिक्षुणियों का अबाध व्यभिचार जारी था। अलंकार ग्रंथों में भिक्षुणियों को द्वितीय कार्य दिया जाना इस बात का सबूत है कि उस जमाने में ये भिक्षुणियां केवल संघ को ही नष्ट नहीं कर रही थी बल्कि सदगृहस्थों को भी चौपट कर रही थी। इन कारणों से साधारण जन समाज इनसे उब गया था। अब बुद्ध देव की महीयसी करुणा में वह जादू न था कि लोग उनकी तरफ आकृष्ट हो। फलतः इनको तंत्र मंत्र का आश्रय लेकर जनता को वश में करने की चेष्टा करनी पड़ी। तंत्र शास्त्र एक तरफ जितना ऊंचा है दूसरी तरफ उतना ही कुत्सित। हम इसके महत्वपूर्ण अंग पर आगे विचार करेंगे। यहाँ दिखाना चाहते हैं कि इस मतवाद के कारण परकीय प्रेम के आदर्श पर कैसा प्रभाव पड़ा था। यह बात सर्वविदित है कि तांत्रिक अनुष्ठान में स्त्री एक प्रधान उपादान है। कहा गया है कि तंत्र मतवाद के उद्भव का कारण है। आदर्श भ्रष्ट बौद्ध संघ भिक्षुक और भिक्षुणियों के अबाध व्यभिचार से जब लोग संघ की ओर से उदासीन हो रहे थे, उस समय इस व्यभिचार को धार्मिक और दार्शनिक रूप दे दिया गया। वास्तव में यह बात गलत है। संसार के सभी धर्मों में किसी न किसी रूप में तंत्रवाद का अस्तित्व है। तंत्रवाद के मूल सिद्धांत उतने ही पुराने हैं जितनी स्वयं मनुष्य जाति। एक, दी कलकत्ता रिव्यू जून 1927 पृष्ठ संख्या 362-3 और बोस पोस्ट चैतन्य सहजिया कल्ट पृष्ठ संख्या 101 और आगे। दो, द्वितीय सखी नटी दासी धात्रेयी प्रतिवेशिनी बाला प्रवर्जिता कारुह शिल्पानाध्या स्वयं तथा। 157 साहित्य दर्पण तृतीय परिच्छेद। 3, मणिन्द्र मोहन बोस पोस्ट चैतन्य सहजिया कल्ट पृष्ठ संख्या 120 और आगे। पृष्ठ संख्या 15, यह हो सकता है कि उस युग में बौद्ध संघों के कारण इस मतवाद का जोर बढ़ गया हो, पर इसके लिए यह नहीं कहा जा सकता है कि इसका उद्भव भी उसी से हुआ है। जो हो, ईसवी सन के आसपास पंचमकार का खूब प्रचार पाया जाता है। उस समय जनता पर इसका बड़ा प्रभाव था। शाक्तों का एक संप्रदाय जो अपेक्षाकृत अधिक दार्शनिक था, पराशक्ति की उपासना स्त्री रूप से करता था। इस संप्रदाय का प्रत्येक धार्मिक अनुयायी त्रिपुर सुंदरी ब्रैकेट में जो इस पराशक्ति का नाम है ब्रैकेट बंद के साथ था। इस प्रकार इस संप्रदाय के अनुयायी ईश्वर की पुरुष रूप में नहीं बल्कि स्त्री रूप में पूजा करते थे। तंत्रवाद का यह ऊंचा अंग तात्कालिक पंडितों का चित्त आकृष्ट कर रहा था। इसका प्रभाव भागवत संप्रदाय पर भी पड़ा। भागवत संप्रदाय में बालकृष्ण का प्रवेश हो चुका था। राधा और गोपियों के रूप में तंत्र शास्त्र का उक्त अंग भी इसमें सुलभ हो गया। यह बात वैष्णव मतों के विद्यार्थी से छिपी नहीं है कि उत्तर काल में राधा का स्थान कृष्ण से भी बढ़कर बताया जाने लगा था। तंत्रवाद का दार्शनिक और आध्यात्मिक पहलू बहुत ऊंचा था, परंतु यह मत अपेक्षाकृत असंस्कृत लोगों में बहुत विकृत हो गया था। वैष्णवों ने राधा और कृष्ण के रूप में शक्ति उपासना को ग्रहण करके उसे एक शुद्ध मर्यादा के भीतर कर दिया। तंत्र साधना में स्त्री अनुष्ठान का एक साधन भर थी। वैष्णव मत में वह परम पुरुष को पूर्ण करने वाली समझी जाने लगी। तंत्र की परकिया एक यांत्रिक साधना थी, किंतु वैष्णव परकिया प्रेम का साधन थी। राधा के बिना कृष्ण अपूर्ण थे। यह बात एक ऐसी बात है जो तंत्रवाद से वैष्णव भाव को पूर्ण पृथक कर देती है। चैतन्य देव के वैष्णव संप्रदाय में परकिया प्रेम को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है, परंतु समाज में इसका निषेध किया गया है। भक्त स्वयं अपने को परकिया समझेगा और कृष्ण की प्राप्ति के लिए अपने को उत्सर्ग कर देगा। वह किसी परकिया स्त्री से प्रेम नहीं करेगा बल्कि स्वयं अपने को परकिया कर देगा। एक, वैष्णविज्म सेविज्म एंड माइनर रिलीजियस सिस्टम पृष्ठ संख्या 146। दो, उत्तर वैष्णव संप्रदाय में कृष्ण को राधा की लीला का आश्रय बताया गया है। श्री कृष्ण का जो अंत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वह है आनंद। अद्वैत मत से जो जीव भी सत चित्त और आनंद स्वरूप है, पर द्वैत मत में जीव में अंतिम गुण नहीं माना गया है। राधा को श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति कहकर जहाँ उनका अभेद प्रतिपादन किया गया है, वहीं यह भी बताया गया है कि राधा के बिना कृष्ण अपूर्ण है। राधा एक शक्ति एनर्जी है, कृष्ण उसकी लीला के आश्रय। देखिए पोस्ट चैतन्य सहजिया कल्ट पृष्ठ संख्या 230 से लेकर 235। तीसरा, उज्जवल नीलमणि कृष्ण वल्लभा 5। इस ग्रंथ के प्रथम अध्याय के 16वें श्लोक पर की टीका में लिखा है, श्री राधा जी कृष्ण की स्वरूपालादनी शक्ति है, इसलिए वे वस्तुतः स्वकीय ही है पर किया नहीं। इस तर्क को समझने के लिए यह जान लेना चाहिए कि श्री कृष्ण सच्चित आनंद स्वरूप है। इसमें राधा आह्लादनी शक्ति या आनंद शक्ति है, इसलिए वे कृष्ण के आनंद रूप की अपनी शक्ति अर्थात स्वकीय ठहरती है। इस प्रकार गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भी राधा केवल प्रेम के लिए परकीय है, परमार्थतः स्वकीय ही है। पृष्ठ संख्या 16, स्वकीय से परकिया का स्थान ऊंचा है क्योंकि उसमें प्रेम का वेग अधिक रहता है। चैतन्य देव भावमत होकर जब नाच उठते थे तो प्रायः यह श्लोक गाया करते थे। प्रियः सो अयम कृष्णः सहचरी कुरुक्षेत्र मीलितः तथा अहम् सा राधा तदिद मुभयोः संगम सुखम तथाप्यंतः खेलन मधुर मुरली पंचम जुसे मनो में कालिंदी पुनीन विपिनाय प्रियति। सूरदास के इस पद के साथ तुलना कीजिए, यह भी कुरुक्षेत्र के प्रसंग का ही है। हरिजू वे सुख बहुरी कहा यद्यपि नैन निरखत वह मूर्ति फिरी मन जात तहा मुख मुरली सिर मोर पखोआ गर घुगचिन कोहार आगे धेनु रेणु तन मंडित चितवन तिरछी चाल रात दिवस अंग अंग अपने हित हसी मिली खेलत खात सूर देखे वा प्रभुता उनकी कहीं नहीं आवे बात। ऊपर के इस श्लोक के संबंध में चैतन्य चरितमृत में एक कहानी इस प्रकार है। महाप्रभु चैतन्य देव पुरी गए थे। वहाँ जगन्नाथ जी को देखकर उनके मन में आया कि प्रभु अगर ब्रज में होते तो क्या ही अच्छा होता। उसी समय वे भावमत होकर शीला भट्टारी का कहा जाने वाला यह श्लोक गाने लगे। यह कौमार हर इत्यादि श्री रूप गोस्वामी सदा महाप्रभु के साथ रहा करते थे। वे प्रभु के प्रत्येक भाव को समझते थे, इस बार भी थे। वे संस्कृत के बड़े अच्छे कवि थे। महाप्रभु का भाव समझकर उसी श्लोक के भाव पर इस श्लोक की रचना की। श्लोक देखकर महाप्रभु परम आनंदित हुए। चैतन्य देव स्वयं राधा भाव से श्री कृष्ण को प्रेम करते थे। जो लोग उन्हें श्री कृष्ण का अवतार समझते हैं, उनका कथन है कि श्री कृष्ण राधा प्रेम को स्वयं अनुभव करने के लिए चैतन्य के रूप में अवतीर्ण हुए थे। भावुक भक्त राधा के रूप में जिस विरह का अनुभव करता है वह पत्थर को भी गला सकता है। टिप्पणी, एक कहानी इस प्रसंग में कही जाती है। एक राजा की लड़की किसी राजपुत्र के प्रेम करने लगी। दोनों नदी के किनारे एक कुंज में जाया करते थे। राजा को जब यह बात मालूम हुई तो दोनों की शादी करा दी, परंतु विवाहित जीवन में उन्हें वह प्रेम फीका जान पड़ने लगा। कहा जाता है कि काव्य प्रकाश का एक श्लोक इस कहानी के आधार पर है। इस कहानी से परकिया प्रेम की उच्चता सिद्ध की जाती है। एक, यह कौमार हर स एव ही वरस्ता एव चैत्र छपस्ते चौन मिली ते मालती सुरभय प्रौढ़ा कदम्बा नीलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सूरत व्यापार लीला विधौ रेवाधोसी वेत सीत तरु तले चेतः समुत कंठते। पोस्ट चैतन्य सहजिया कल्ट पृष्ठ संख्या 50 से 51। पृष्ठ संख्या 17। कहा करो कहा पाओ ब्रजेंद्र नंदन कहा मोर प्राणनाथ मुरली वदन कहा रे काहिब कष्ट केसवा जाने मोर दुख ब्रजेंद्र नंदन बिनु फाटे मोर बुक। चैतन्य चरितमृत 2 से 2। ये वा तुमी सखीगण विषादे बाउल मन कारी पूछो के कहे उपाय कहा करो कहा जाओ कहा गेले कृष्णो पाओ कृष्ण बिनु प्राण मोर जाए। चैतन्य चरितमृत 2 से 17।